ओम शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता आत्म प्रकाश भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। संतरा नगरी नागपुर से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1972 में ज्ञान प्राप्त किया और 1973 में नागपुर विश्वविद्यालय से एमएससी की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की और तब से धुन सवार हो गई। अलौकिक पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है और उसी धुन में रहते ज्ञान की गहराई में उतरे, योग के अच्छे अनुभव किए और 76 में मधुबन धरनी पर आए और अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। वर्तमान में आप तीनों ही कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो हमारा टोली किचन है, जहाँ से हमें टोलियाँ मिलती हैं, वो संभालते हैं और इसके साथ साथ जो हमारा युवा प्रभाग है उसके आप हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। और चूंकि ज्ञान की बहुत गहराई है, पूरे विश्व भर से निमंत्रण मिलते हैं, 90 से भी अधिक देशों का भ्रमण करके जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचाया है, ब्राह्मण बच्चों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने के लिए सुंदर मार्गदर्शन दिया है, तो आज भी अपने अनुभव के आधार से हमें मार्गदर्शन देंगे कि याद का बल और फल क्या होता है। सुनते हैं भ्राता जी को, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। याद का बल और फल। हम सभी परमात्मा को याद करते हैं, सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव को याद करते हैं और उनकी याद का जो फल है हम प्राप्त करते हैं। तो याद का फल है, बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई आपको होती है, एक सेकंड में। इतनी प्राप्ति किसी से भी हमें नहीं होती है। तो फल क्या है, एक सेकंड भी याद करते हैं तो अनेक पद्मों की कमाई, अविनाशी कमाई हमारी होती है। दूसरी बात, जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हमारे विकर्मों को भस्म होते रहते हैं, खत्म करते रहते हैं। हमारे सिर पर जो अनेक जन्मों का पापों का बोझा है उस बोझ को हम खत्म करते हैं। तीसरी बात है, इस याद के बल से ही, याद के फल से ही हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है और कोई तरीका नहीं है आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का। दूसरा फल है याद से हमें अविनाशी खुशी मिलती है, स्थायी खुशी अनुभव होती है। याद से जो भी आत्मा को बांधने वाले बंधन हैं, उन सभी बंधनों से हम मुक्त होते जाते हैं। आत्मा शक्तिशाली होती है तो जो भी बंधन होते हैं वो सब बंधन वो काटते जाते हैं। और याद का फल ये है कि सर्वश्रेष्ठ स्थिति हमारी कर्मात स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, वो याद के बल से ही हमें प्राप्त होती है। तो याद का फल है न्यारा प्यारा होने की कला प्राप्त करना, सदा हल्के स्वयं को अनुभव करना। तो इतने सारी प्राप्तियां हमें याद से होती है, इसलिए बाबा कहते हैं सदा याद की यात्रा पर रहो। सदा सदा मुझे याद करते रहो। क्या जरूरत है भाई बाबा को याद करने की? हर मुरली में बाबा कहते मुझे याद करो, मुझे याद करो, मुझे याद करो, किसी और को याद नहीं करना। कारण क्या है इसके पीछे? हाँ जी, क्यों बाबा को याद करें? क्योंकि बाबा को ही याद करने से शक्तियां मिलती है। आत्माओं को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को याद करने से शक्तियां खर्च होती है, क्योंकि शक्तियां हमेशा हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट की तरफ प्रवाहित होती हैं। तो जब हम सुप्रीम जो बाबा हैं, सबसे हाईएस्ट पॉइंट हैं, उनसे कनेक्शन जोड़ते हैं तो आत्मा में स्वतः ही शक्तियां आने लगती हैं। इसलिए बाबा को याद करने में ही हमारा कल्याण है ना? याद को याद ही कहते हैं। क्यों भाई, दूसरा शब्द नहीं मिला लोगों को? बाबा को भी याद, उल्टा क्या है? दया। दया के सागर के हम बच्चे हैं। जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हम स्वयं को खजानों से माला माल करते हैं, उतना हम स्वयं पर दया करते हैं। अगर हम याद नहीं करते हैं बाबा को तो खुद पर भी दया नहीं करते हैं, और ऊपर दया करना तो दूर की बात रही है ना? तो याद का बल है तपोबल, मनोबल। इतना जितना हम बाबा को याद करते हैं तपोबल, तपस्या के द्वारा तपोबल की हमें प्राप्ति होती है। जब पूर्ण एकाग्रता के साथ हम बाबा को याद करते हैं तो उसको तपस्या कहते हैं, और उस तपस्या के द्वारा हम तपोबल प्राप्त करते हैं, हमारा मनोबल बहुत ऊंचा होता जाता है। अभी बाबा को निरंतर कैसे याद करें? क्योंकि हमारी जो रेस है केवल याद करने में ही है, योग करने में ही है, और किसी बात में रेस नहीं है। मुख्य सब्जेक्ट हमारा याद का है, अन्य तीन सब्जेक्ट उसको सपोर्ट करने वाले हैं। तो हमारी जो रेस है वो याद में है। अब इस रेस में हमें केवल रनर नहीं बनना है लेकिन विनर बनना है। इसलिए बाबा की याद हमें सहज रहे, निरंतर रहे और सदा याद की यात्रा पर हम चलते रहें। इसके कुछ टिप्स, इसके कुछ टेक्निक्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे जो इतने ढेर बच्चे हैं उनों में से बहुत थोड़े बच्चे हैं जो मुझे यथार्थ रीति से याद करते हैं। यथार्थ याद से ही यथार्थ प्राप्तियां हमें होती है। इसलिए दिन प्रतिदिन मेरी याद बढ़ती रहे उसके लिए मैं कौन सी बातों पर पुरुषार्थ करूं, उस बातों को हम थोड़ा सा अभी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, निरंतर बाबा की याद में रहने के लिए हमें अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना जरूरी है। बाबा के पास हम आए हैं आध्यात्मिकता की शक्ति को प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिकता, आत्मिकता जो शब्द है उसमें अंतर निहित है। जितना आत्मिक भाव हमारा बढ़ता जाता है उतनी आध्यात्मिक शक्ति हमारे में बढ़ती जाती है। बाबा मुरली में भी कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, मज बाप को याद करो। तो जब तक स्वयं को हम आत्मा अनुभव नहीं करते हैं तब तक बाबा की याद नहीं आ सकती है। जितना आत्मा का अनुभव हम बढ़ाते जाते हैं उतनी बाबा की याद बढ़ती जाती है। देह की स्मृति रहने से बुद्धि हमारी इस देह की दुनिया में पदार्थों के पीछे भागती है और आत्मा का अनुभव करते ही ट्रैक्ट बदल जाती है, बुद्धि बाबा के तरफ ऑटोमेटिक जाने लगती है। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर यथार्थ रीति से आत्मा का अनुभव बढ़ाना जरूरी है। यथार्थ रीति कौन सी है? अगर विधि यथार्थ है तो सिद्धियां, उपलब्धियां, आत्मा की शक्तियां स्वतः ही हमें अनुभव होने लगती हैं। आत्मा का ज्ञान हमारे पास है लेकिन उसको अनुभव करने की विधि बड़ी सरल है। एकांत में बैठकर बुद्धि रूपी नेत्र से स्वयं के स्वरूप को देखना होगा। जब तक आत्मा दिखाई नहीं देती है तब तक बाबा की याद भी नहीं आती है और आत्मिक स्थिति में हम स्थित भी नहीं हो सकते। तो दिव्य नेत्र से हमें ब्रुकुटी के बीच में देखना है, मैं ये चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। जितना खुद को देख सकते हैं उतना ही खुदा को देख सकते हैं। जितना खुद की याद आती है उतनी ही खुदा की याद स्वतः ही आती है। इसलिए अपने स्वरूप को बार बार हजार बार हम देखते रहें और उसमें स्थित होते रहें तो उससे क्या होगा, आत्मा के जो 7 गुण हैं, निजी गुण हैं, ओरिजिनल क्वालिटीज हैं, वो स्वतः ही अनुभव होने लगती है और आत्मा का आभा मंडल धीरे धीरे विकसित होता जाता है। इसलिए कहते हैं जब समझते हैं आत्मा तो पापों का होता है खात्मा, जब समझते हैं ज्योति तो माया भाग जाती। क्योंकि जंगल में शेर किसी को नहीं डरता है, केवल अग्नि को डरता है। तो ये भी आत्मा की ज्योति प्रखर जलती रहेगी तो माया रूपी शेर हमारे पास नहीं आ सकता है। इसलिए इस देह रूपी मकान में आत्मा की लाइट सदा जलती रहे, ये मेरा फर्ज है। जहां होगा अंधेरा वहां होगा भूतों का डेरा। तो इस घर में अंधेरा 2500 साल से रहा है ना दीदी। तो ये बंगला क्या बन गया? भूत बंगला बन गया। और वो भूत हमें परेशान करते आए करते आए। वो बाबा ऊपर से देख रहे हैं, ये मेरे लाल का क्या हाल हो रहा है भाई, मुझे जाना होगा। तो बाबा नीचे आए और इस घर में लाइट जला दी और भूत भाग गए भाई, भूत भाग गए, जरा भूख भाग गए। इसलिए बाबा को भूतेश्वर कहते हैं, भूतों को भगाने वाला भूतेश्वर कहते हैं, है ना भाई। तो हमेशा ध्यान रखना है, आत्मा की लाइट आत्मा की ज्योति कभी ना बुझे। माया उसको बुझाने की कोशिश करती है बिल्ली, हमें उसको जगाना है। वो माया बिल्ली हमारे पीछे पड़ी रहती है, क्यों भाई क्या बात है, है जी? हम उसको जगाते हैं वो बुझा देती है, जगाते हैं हम बुझा देती है, क्यों पीछे पड़ी रहती है हमारे। मैं राजकोट में सर्विस करता हूं आपका, मैंने मकान किराए का लिया, 1 साल का किराया नहीं दिया। अब मेरी ट्रांसफर राजकोट से अहमदाबाद हो गई, मुझे जाने दोगे? मेरा बिल दे दो, जहां मर्जी जाओ बाद में। तो ये हमने 63 जन्म 63 मकान माया से किराए से लिए, उसका बिल नहीं दिया और उसको पता चल गया ये तो अभी जाने वाला है परम धाम, इसलिए बिल्ली कहते मेरा बिल दो नहीं तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगे। भाई दे दो ना, जो भी खर्चे के लिए देह का भान छोटा मोटा विकारों के अंश वंश रहे उसको दे दो, माया बिल्ली हमारा पीछा छोड़ देगी। दूसरी बात, अशरीर स्थिति से क्या होता है, देह के बंधन से हम न्यारे हो जाते हैं। अब दूसरी बात, देह के बंधन से न्यारे होने के बाद हमें यहां से ऊपर जाना है, बाबा के पास बैठना है और बाबा से कनेक्शन जोड़ना है। वो काम कौन करेगा? वो काम हमारा स्वमान करता है। जब हम स्वमान में स्थित होते हैं, मन और बुद्धि हमारी हल्की फुल्की होती है, नशे में झूमने लगती है और परम धाम की ओर हमें ऊपर ले जाती है और बाबा के पास में बिठा देती है। ये काम स्वमान करता है। इसलिए स्वमान का हाथ हमें परमात्मा का साथ दिलाता है। इसलिए स्वमान का हाथ हमें नहीं छोड़ना है। कितना भी कुछ भी माया अपोजिशन करें, हमने स्वमान के सिंहासन को नहीं छोड़ना है। हम जो भी सभा में बैठे हैं बहुत रॉयल आत्माएं हैं, एक भी साधारण आत्मा नहीं है। तो बाबा ने सभी आत्माओं को स्वमान का सिंहासन पर बैठने के लिए दिया, तो हमें उस सिंहासन पर बैठे रहना है। माया हमें उतारने का प्रयास करती है, बाबा उस पर बिठाने का प्रयास करते हैं। तो हमें कितना भी अपोजिशन माया का हो, इस सिंहासन को हमें नहीं छोड़ना है, स्वमान के सिंहासन पर। स्वमान में यथार्थ रीति से कैसे स्थित हो जाए, उसकी विधि क्या है? जो भी बाबा ने स्वमान के टाइटल हमें दिए हैं, ढेर सारे टाइटल दिए हैं मुरली में, 100 से भी जास्ती है, 200 भी जास्ती है, कोई भी टाइटल जो हमें खुशी दिलाता है नशे की अनुभूति कराता है वो समान का टाइटल हमें सिलेक्ट करना है। ठीक है भाई, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं राज ऋषि आत्मा हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं पूर्वज आत्मा हूं, उदार मूर्त हूं, आधार मूर्त हूं, जो भी आपको अच्छा लगता है समान का टाइटल उसको सिलेक्ट करना है। तो विधि क्या है, मैं आत्मा, सिंहासन कौन सा है, विश्व परिवर्तक आत्मा ये सिंहासन है, समान का टाइटल है, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। बैठ गए तो आपका सोचना, बोलना, कर्म करना, सब कुछ, व्यवहार जो भी है सब कुछ बदल जाता है। और एक समय आता है विश्व परिवर्तक आत्मा हूं ये टाइटल आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। इसलिए टाइटल रूपी टॉय हमें पहनकर ही सेवा के क्षेत्र में जाना है जी। वो टाइटल, वो टाई पहनते हैं ना लोग बाहर, जैसे वो पट्टी पहनते हैं ना, ढाई ढाई फिट की, टप 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 टप, अरे बाप सब सैल्यूट मारते है ना। वो टाई उतारते हैं घर में आके, फिर होम मिनिस्टर को सैल्यूट मारते हैं। ठीक है भाई, तो टाई का इतना महत्व है ना। तो हमें ये समान का टाइटल रूपी टाई हमेशा पहन कर ही सेवा के क्षेत्र में जाना है। ब्रह्मा बाबा को शुरू दिन से मैं नारायण बनने वाला हूं, सारे संसार में नंबर वन जो आत्मा है वो नारायण बनने वाला हूं। तो हमेशा बाबा को नारायणी नशा रहता था और वो नशा हमें अपने निशाने की ओर तेजी से आगे बढ़ाता है। नशा ईश्वरीय नहीं होगा तो डीले ढाले चलेंगे, नशाने पर जल्दी पहुंच सकेंगे, कोई गारंटी नहीं। तो समान में स्थित रहना अर्थात स्वयं ही स्वयं को मान देना सीखना। भगवान ने हमें बड़े बड़े टाइटलों से नवाजा है, कोई अधिकारी ने नहीं, स्वयं भगवान ने, बापरे बापरे, स्वयं भगवान ने। किसी को पद्मश्री का टाइटल मिलता है, भारत रत्न का टाइटल मिलता है, क्या नशे में चलता है, मैं भारत रत्न हूं बस ना। अरे हमको तो भगवान ने टाइटल दिए हैं और विश्व के रत्न हम हैं, भारत के रत्न नहीं है केवल, इतने महान आत्माएं हैं। भगवान ने सिलेक्शन हमें करोड़ों में किया, किसी का लाखों में होता है ना, मेरा लाखों में सिलेक्शन हुआ बस ना। अरे हमारा करोड़ों में सिलेक्शन किया है और भगवान ने किया है, बापरे बापरे, कितनी बड़ी बात है ना। तो स्वमान में स्थित रहना है, ये अहंकार नहीं है, ये शुद्ध नशा है। किसके बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के हम बच्चे हैं, जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिसके इशारे पर ये सारा संसार चल रहा है, उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसने मुझे अडॉप्ट किया, तो शेर का बच्चा शेर होता है। तो सर्वशक्तिवान का बच्चा मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ऐसे नशे में रहेंगे फिर देखना आपके चेहरे पर हमेशा ईश्वरीय नशे की झलक और फलक ऑटोमेटिक छाई होगी। राजकुमार की ड्रेस अपनी होती है और अपने उसमें राजाई का जो स्थान होता है उसका मड़े नशे से चलता है सब, तो राजकुमार आ रहा है भी, हम भी तो ईश्वरीय कुमार हैं, तो ईश्वरीय कुमारों का जो ड्रेस है वो है ईश्वरीय नशा। वो ड्रेस हमें पहनना है, राजकोट में सारी राजा महाराजा बनने वाली आत्माएं बाबा ने रखे हैं, नाम ऐसे ही राजकोट नहीं पड़ा है, बहुत राजाएं बनने वाली आत्माएं वहां है ना भाई, हाँ इसलिए तो ड्रामा अनुसार नाम पड़ा है। ठीक है, तो बाबा की आशा है मैं हर एक आत्मा रूपी बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। राजा सिंहासन पर बैठता है, राजा शासन करता है, तो मैं आत्मा समान के सिंहासन पर सदा बैठा रहूं और अपनी जो कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है उस पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करता हूं। जो स्वयं का राजा संगम युग में बनता है वही सतयुग त्रेता युग में औरों का राजा बनता है। अब खुद के ही राजे नहीं बनेंगे तो औरों के कैसे बनेंगे भाई, औरों को कैसे संभालेंगे? तो समान में हमें टीप स्थित रहना है। बाबा ने एक मुरली में कहा था समान एक शब्द है, उस समान शब्द को धारण करेंगे स्वरूप में लाएंगे तो बाप समान बन जाएंगे। इतना बड़ा राज उसमें छिपा हुआ है, समझा? तीसरी बात, निरंतर बाबा को याद करने के लिए हमें बाबा के प्रति प्यार, दिल का प्यार बढ़ाते रहना है। हमारे पास कुछ नहीं है, हम बेघर हैं, बेघर माना बेघर, ये भी मकान किराए से लेके रखा है प्रकृति से और पांच तत्व से। हमारे पास केवल और केवल दिल के प्यार की, सच्चे प्यार की पूंजी है, बाकी कुछ भी नहीं है। कहते हैं जितना जो गरीब होता है उतना वो परमात्मा के करीब होता है। अब दुनिया में गरीब किसको कहते हैं भाई? जिसको रहने का भी मकान नहीं होता है, बहुत बेचारा गरीब है। तो इस मकान से जितना डिटैच होते हैं, विदेही हो जाते हैं तो गरीब हो गए, तो परमात्मा के करीब हम अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि बाबा में और हमारे बीच में केवल एक दीवार है, वो देह के वाहन की दीवार है। इस देह के वाहन की दीवार को हटा देते हैं तो बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति की अनुभूति हमें होती है। लेकिन बाबा के प्रति दिल का सच्चा प्यार भी हमें बढ़ाते रहना है। आप कहेंगे भाई हमारा तो प्यार बाबा से है, बिल्कुल है, किसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बाबा चाहता है जिगरी प्यार, हड्डी प्यार, सच्चा प्यार, बस मेरे से करें बाबा। बाबा चाहते हैं, हम क्या करते हैं, हम ठगी क्या करते हैं? मां से प्यार, बाप से प्यार, घर से प्यार, कार से प्यार। बाबा मैंने आपके लिए थोड़ा सा रखा है प्यार, थोड़ा सा बचा क्या रहा। अरे बाबा कहते हैं इधर उधर बांट बूट दिया फिर थोड़ा बचा हुआ मुझे दे रहे, ऐसा झूठा प्यार मुझे नहीं चाहिए। मैं केवल प्यार का सौदागर हूं और बहुत पक्का सौदागर हूं, सच्चा सौदागर हूं। जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा, बाबा कहते हैं। क्योंकि प्यार एक ऐसी ताकत है, ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो हजारों मीलों की दूरी बाबा में और हमारे में है। उस दूरी को समाप्त करके आमने सामने की नहीं लेकिन कंबाइंड स्थिति की अनुभूति ये प्यार हमें कराता है। इसलिए कहते हैं जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुटी रहती है, जैसा प्यार वैसे बुद्धि की तार जुट जाती है, और जितना प्यार उतना बुद्धि की तार हमारी जुटी रहती है। तो योग याद करना अर्थात क्या, भगवान से प्यार करना, यही तो याद है, यही तो योग है, और है क्या योग? लेकिन हमें कठिन लग रहा है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि सारे कल्प में हमने प्यार की लेन देन देह के माध्यम से की, अभी निराकारी स्वरूप में स्थित होकर निराकारी बाप से याद करें, ये थोड़ा सा कठिन है। अगर इसकी कला हम जानते हैं तो कोई याद करना कठिन नहीं है, ठीक है भाई? तो बाबा से हमें प्यार बढ़ाना है। किसी भी व्यक्ति वैभव से हमें प्यार को शेयर नहीं करना है। संगम माना बाबा के संग में रहना, सारे क्लब आत्माओं के संग में रहें और सतयुग से लेकर वही काम करेंगे, आत्माओं के संग में रहेंगे, लेकिन ये संगम है ईश्वर के साथ भगवान के संग में रहना है जी। भूल से भी किसी देहधारी से हमें प्यार शेयर नहीं करना है। प्यार शेयर करने वाले शेर की तरह माया की दुनिया में दहाड़ नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे पास क्लैरिटी होनी चाहिए आत्माओं के प्यार में और परमात्मा के प्यार में कितना अंतर है। ये अंतर हमारे पास क्लियर होगा तो हम कभी भी आत्मा के साथ प्यार शेयर नहीं करेंगे। जानना चाहेंगे भाई, लिखो पांच बातें। वो अगर रियलाइज करेंगे ना, भूल से भी किसी भी आत्मा के साथ प्यार नहीं करोगे। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। द्वापर युग से हमने बहुत धोखे खाए, बहुत कड़वे अनुभव किए। माया ने हमें फुटबॉल बना के पांचों खिलाड़ी ऐसे पीटते रहे, ऐसे लताड़ते रहे, कहीं का नहीं रखा। केवल परमात्म प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है ना भाई। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है और अनकॉम्प्लिकेटेड प्यार है। आत्माओं के प्यार में तो कितने कंडीशंस है, कितने कॉम्प्लिकेशंस है। किसी से प्यार होता है तो सारे कंडीशन लिख के देते, ये मेरी शर्त है। अगर शर्त नहीं पूरी होती है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते। भगवान के प्यार में कुछ कंडीशन है ही नहीं। बाबा कहते हैं मुझे केवल और केवल सच्चाई चाहिए, सच्चे दिल पर साहब राजी, झूठे दिल पर धर्मराज की बाजी। बाबा कहते डंडा मेरे पास है, ध्यान रखना। देखो हमारी भोली भोली माताएं इस सभा में, भोली भोली माताएं पीछे बैठी है, वो भोला नाथ बाप का दिल जीत के ये भोली माताएं यहां बैठी है भाई, यहां बैठी है। कितनी भाग्यशाली है आप सोचो तो सही। कितना भी बुद्धिमान होगा, भगवान को नहीं पहचाना, कुछ काम का नहीं, ये बहुत महान आत्माएं हैं। और कोई कंडीशन नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है, अविनाशी प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। स्वार्थ के बिना इस दुनिया में कोई प्यार करता ही नहीं है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। अगर हम थोड़ा सा प्यार करेंगे तो वो उतना ही प्यार हमारे से करेंगे, लेकिन भगवान तो प्यार का सागर हैं और निस्वार्थ प्यार हमसे करते हैं, देते ही है प्यार, हमें चाहते कुछ नहीं, हमारे से लेते कुछ नहीं है, है ना। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, कितना अंतर है देखो। और बेहद का प्यार है, ये सागर है, ये तो गागर वो भी खाली है, उछलती जाती है, क्या प्यार करेंगे उनसे बताओ, है ना भाई। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है। संगम योग है आत्मा को पवित्र बनाने का, चढ़ती कला का अनुभव करने का। तो परमात्म प्यार ही हमें चढ़ती कला की अनुभूति कराता है और प्योर बनाता है। आत्माओं का तो शरीर भी इम्प्योर है और आत्मा भी इम्प्योर है, क्या प्यार करेंगे उनसे। और पांचवी बात, केवल परमात्म प्यार हमें होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाते हैं। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। टॉप क्वालिटी की आत्माएं हमेशा टॉप फ्लोर पर रहती है, परम धाम में रहती है। ये तो घटिया थर्ड फ्लोर है, माया की दुनिया है। तो इन पांच बातों को अगर रियलाइज करते हैं तो हम दिल से बाबा के प्रति ही प्यार ट्रांसफर करते जाते हैं और याद हमारी बढ़ती जाती है। याद और प्यार, ये दोनों शब्दों का बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी याद उतना प्यार बढ़ता है, जितना प्यार बाबा से बढ़ता है उतनी याद बाबा की बढ़ती है। इसलिए बाबा कहते हैं याद प्यार नमस्ते, ठीक है। तो जिगरी प्यार हमारा बढ़ता रहे, हमें चेक करना है विश्व के ग्लोब पर खड़े होकर कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं, कोई ऐसी वस्तु तो नहीं, कोई ऐसा स्थान तो नहीं है जहां मेरी बुद्धि बार बार जाती है। अगर है भी तो उसको चेक करना है और बाबा के तरफ ट्रांसफर करना है, चेंज करना है, वहां से बुद्धि को हटाना है और बाबा के साथ जुटाना है। तो धीरे धीरे हमारी याद बढ़ती जाती है, ठीक है। चौथी बात, बाबा की याद बढ़ाने के लिए अब बिंदु समझकर, बिंदु बाप को याद हम तो हम करते हैं, लेकिन एक घंटा दो घंटे के बाद में हमें बोर होने लगता है। क्या बिंदु बिंदु बिंदु, हाँ दीदी क्या बिंदु बिंदु लगा के रखे ना, तो कड़ी खिचड़ी तो हर रोज खाते हैं भाई, कभी बोर हुआ नहीं हुआ। फिर भी मनुष्य वैरायटी चाहता है, वो कुछ नवीनता चाहता है, इसलिए बाबा के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति हमें करते रहना है। बाबा कहते 24 घंटे में आपको कंपनी देने के लिए तैयार हूं, भगवान ऑफर कर रहे हैं भाई, गॉडली स्कीम, 24 घंटे में आपको कंपनी के देने के लिए तैयार हूं, मुझे यूज करो या लूज करो, वो आपके हाथ में है। हमें बाबा को फ्रिज छोड़ना ही नहीं, अगर कुछ भी काम नहीं तो बोलो बाबा यहीं बैठे रहो और मुझे देखते रहो और कुछ नहीं करो, है ना, बस देखते रहो, सकास देते रहो, बस मैं प्यारा बच्चा हूं, मैं आपकी प्यारी बच्ची हूं, ठीक है ना भाई। तो इसलिए सवेरे से लेकर रात्रि तक बाबा को हमने छोड़ना नहीं है, अलग अलग संबंधों के रूप में हमें बाबा को याद करते रहना है। क्यों जरूरी है भाई अलग सारे संबंधों के रूप में बाबा को याद करना, सोचा है कभी? संगम युग में हमें हर संबंध का अनुभव करना जरूरी है, कोई प्रॉब्लम हो ना हो फिर भी हमें सर्व संबंधों की अनुभूति करना है। क्यों जरूरी है, क्या क्या बात है? उसके पीछे कारण है, सारे कल्प में 84 जन्म हम पाठ बजाते हैं, हर जन्म में हमारा रोल अलग अलग होता है, आधे जन्म मेल के और आधे फीमेल के होते हैं, ये तो बाबा ने बता दिया है, लेकिन फिर भी अलग अलग रोल हमारा होता है और जो हमें रोल मिलता है वो हमें अच्छी तरह से बजाना होता है, लेकिन वो रोल बजाने की कला हमें अभी आत्मा में भरना है। कैसे? बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करके, जो संबंध मिला बजा रहे हैं बहुत अच्छे तरह। गाय का बछड़ा जन्म लेता है उसको नहीं कोई बताता है स्तन के पास जाओ दूध पीने के लिए, उसमें संस्कार होता है, दौड़ा दौड़ा जाता है स्तन के पास दूध पीने के लिए, क्योंकि संस्कार होता है। तो हमें ये संस्कार अभी घर जाने के पहले आत्मा में भरने हैं, इसलिए हरेक संबंध की अनुभूति मेरे पास होना बहुत जरूरी है। और वैरायटी होने से क्या होगा, योगाभ्यास में हमारी रुचि बनी रहती है, है ना। कितने संबंध अनुभव करेंगे भाई, मुख्य आठ है, दीदी आठ कहती भाई, बोलो आप लोग, हाँ जी, हाँ, अनेक प्रकार के, तो गोलमोल जवाब हो गया। सवेरे से लेके रात्रि तक हमने 11 कम से कम 11 संबंध अनुभव करना है। आंख खुलते ही बाबा को गुड मॉर्निंग करते ही बाबा को बाप के रूप में याद करना है, बाप का प्यार निस्वार्थ प्यार अनुभव करना है। जैसे सेवा केंद्र पर जाते हैं बाबा को टीचर के रूप में याद करना है, जैसे सेवा केंद्र से बाहर जाते हैं बाबा को सद्गुरु के रूप में अनुभव करना है, जैसे आप अपने कारोबार में जाते हैं अपने बिजनेस में दुकान मकान जहां पर भी जाते हैं बाबा को खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करना है। चौथा संबंध बाबा मेरा दोस्त है, और पांचवा संबंध है बाबा मेरा बच्चा है, बाबा को बच्चा बनाकर उसका वर्षा भी हमें देना है। छठवा संबंध बाबा मेरी माँ है, माँ से जो ममता होती है दुलार होती है वो भी हमें हटाना है। सातवा संबंध बाबा मेरा साजन है, मैं आत्मा उसकी सजनी हूँ। आठवा संबंध है बाबा मेरा सर्जन है, जो भी पुरानी बीमारी है उसको हटाने के लिए सर्जन को बुलाना है और उस बीमारी से मुक्त होना है। नौवा संबंध बाबा गाइड है मेरा, जब भी दुविधा में हम फंस जाते हैं बाबा को बुलाओ मुझे गाइडेंस दो, आगे चलकर बाबा बहुत अच्छी तरह से पल पल हमें गाइडेंस देंगे। दसवा संबंध बाबा मेरा रक्षक है, हमेशा मेरा पाठी राखा बैकबोन बनकर रहता है, उसका हाथ मेरे सिर पर सदा रहता है। और ग्यारहवा संबंध है बाबा धर्मराज भी हैं, मुझे छोटी मोटी भूल नहीं करना है, अगर भूल करूंगी करूंगा तो बाबा से धर्मराज से सजा भी मुझे मिलेगी। कहने का मतलब किसी ना किसी रूप से बाबा को याद जरूर हमने करना है, ठीक है। पांचवी बात, बाबा की याद अच्छी तरह से हमें बढ़ाना है तो उसके लिए याद और सेवा का बैलेंस मुझे रखना है, ये बात अपने आप से पक्की करनी है। याद और सेवा का बैलेंस रखना है, क्योंकि बैलेंस रखने वाले ही ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं, और जो ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हैं वही हमेशा ब्लेसफुल रहते हैं। हम क्या करते हैं, सवेरे शाम तो हम बाबा को याद जरूर करते हैं, और जैसे काम पर जाते हैं सेवा पर जाते हैं योग को याद को किनारे रख देते हैं। तो जितना महत्व हम सेवा को देते हैं उतना महत्व हमें योग को भी देना है, क्योंकि कर्म करते समय अगर बाबा की याद करते हैं तो कर्मों में दिव्यता आती है, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनते हैं, कर्म हमारे यादगार बनते जाते हैं। इसलिए हमें कर्म और योग साथ साथ करना है, कर्म अलग और योग अलग ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे पास टाइम अभी नहीं है और कंप्यूटर का जमाना है, इसलिए बाबा कहते वन इन वन का टाइम चला गया, अभी टू इन वन थ्री इन वन का समय चल रहा है। एक ही साथ बाबा की याद और सेवा, एक ही साथ सेवा तन मन धन से सेवा, तो हमें ये अभ्यास करना है, क्यों है ना। हमारा उद्देश्य है कर्मातीत बनने का, कर्मातीत बनने के लिए हमें कर्म योगी बनना होगा, तभी हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे। तो हमें सवेरे से अमृत वेले पक्का संकल्प करना है, आज सारे दिन भर में मैंने कर्म योगी बनकर सेवा करना है। उसके लिए सदा समान में रहें, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूँ, अवतरित हुआ हूँ और सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसा नशे में रहेंगे तो कर्म के प्रभाव से आप न्यारे रहेंगे। मधुबन है ब्रह्मा बाबा की कर्म भूमि, चरित्र भूमि, वरदान भूमि, तो इस भूमि पर कर्म योग का अभ्यास अच्छी तरह से करते हैं। कई सोचते हैं केवल हाथों से काम करना ही कर्म होता है, नहीं, जो भी कर्मेंद्रिया हैं उससे जो हम उस काम करते हैं वो कर्म कहलाते हैं। देखना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, तो ऐसे तो 24 घंटे हम कर्म करते हैं। इसलिए मुझे निरंतर बाबा को याद करना है। उसके लिए क्या करना है, अपने को मैं बाबा की छत्र छाया में आत्मा चल रही हूं, पल रही हूं। आपको सतयुग त्रेता युग में आपके सिंहासन पर बड़ी छतरी चाहिए या छोटी छतरी चाहिए, बताओ भाई, चॉइस आपको है, बोलो भाई, बोलो ना राजकोट वाले, बड़ी छतरी चाहिए, बापरे बापरे। तो जो लंबे समय तक बाबा की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करते हैं, उनको सतयुग में उनके सिंहासन पर बड़ी छतरी मिलती है। यहाँ का हिसाब वहां चलता है, इसलिए सारा दिन हमें बाबा की छत्र छाया में चलना है ना, बस मस्ती में रहना रहना है। कहते जितनी ऊंची हस्ती उतनी बड़ी मस्ती, बाबा से बढ़कर और तो कोई ऊंची हस्ती नहीं है, है भाई दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती बाबा हैं, और उनके साथ मेरा बुद्धियोग जुड़ा रहता है तो मेरे चेहरे पर वो रूहानी मस्ती स्वतः ही अनुभव होती है ना। चेहरा हमेशा खुशनुमा चेहरा, एक स्लोगन लिखो, हम सभी हीरो एक्टर हैं, ऑर्डिनरी एक्टर नहीं है, सारे संसार में हीरो एक्टर हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने कहा मैं आपको हीरो का पार्ट देता हूं लेकिन एक ड्यूटी देता हूं, कौन सी ड्यूटी देते भाई बाबा, खुश रहना है और खुशियां बांटना है, बस ये आपको बिजनेस करना है, ये ड्यूटी करना है, दिल खुश टोली खाना है और खुशियां बांटते जाना है। अब कैसे बांटेंगे खुशी, चेहरा मेरा खुशनुमा होगा तो ही तो खुशी बांटेगा ना। तो स्लोगन है मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, चेहरा कितना भी सुंदर हो उस पर मुस्कुराहट नहीं हो ना कोई देखना नहीं चाहता है। तो मुस्कान के बिना मुख खिलता नहीं, सत्ज्ञान के बिना सुख मिलता नहीं, है ना भाई। भगवान ये बगीचा हर रोज ज्ञान और योग के जल से सींचता है, वो बागवान ऊपर से आता है सींचता है, और वो क्या चाहता है, मेरे बगीचे का हर एक रूहे गुलाब कैसा हो भाई, बहुत खिला हुआ है ना। कभी कभी क्या होता है, हम सफर करते हैं कोई पहचान का नहीं है ना, हम ऐसे गुब्बारे की तरह, अरे भाई कम से कम स्माइल तो दो, कम से कम कुछ नहीं दो, जेब से रुपया नहीं दो, स्माइल तो दो, उसके लिए तो पैसा नहीं लगता है। क्योंकि ये सारे संसार की आत्माओं रूपी कल्प वृक्ष के जो पत्ते हैं, हम तने में बैठे हैं, ये सारे हमारे से जुड़े हुए है, चाहे ज्ञान में है या नहीं है, सारे संसार की आत्माएं हमारे से जुड़ी है, क्योंकि हम पूर्वज आत्माएं हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कुछ न कुछ उनको देना है, शांति के भाव, शक्ति के भाव, प्रेम के भाव, खुशी के भाव, पवित्रता के भाव। कोई भी मेरे दर से खाली हाथ नहीं जा सकता है, ये मेरा घर है, ये मेरा दर है, जो भी मेरे दर पर आता है दाता का मैं बच्चा हूं, कुछ ना कुछ वो लेकर जावे, ऐसी हमारे पर बड़ी जिम्मेदारी है। अकेले में बैठे हैं ना आप, कमरे में भी बैठे हैं तो भी आपका चेहरा खुशनुमा हो, क्योंकि सतयुग में एंट्री मिलने के लिए आपके पासपोर्ट पर हर्षित मुक्ता के गुण का स्टैंप लगना चाहिए, नहीं तो नो एंट्री है वहां। हर्षित मुक्ता का गुण नहीं तो देवताओं का पहला गुण है, वो कैसे एंट्री मिलेगी बताओ ना। तो इसलिए हमेशा मन खुश है तो चेहरा खुश है, मन की प्रसन्नता हमारे चेहरे पर स्वतः ही दिखाती है। फेस इज द मिरर ऑफ आवर माइंड, मन में जो भी चलता है हमारे चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता है। मन खुश है, मन प्रसन्न है तो चेहरा प्रसन्न है ना। इसलिए याद में हमें बहुत अच्छी तरह से रहना है। हाँ भाई जी, है क्या कि गया गया कि है? हाँ है तो, है तो बुलाओ। समझा? तो बाबा को याद करते रहे और कमाई करते रहे। लोभी बनना है एक मिनट में।
तो एक गीत बजाना भाई साहब, वो याद लता का, तो ये जादू क्या दिया लता का गीत।
हमने अभी आधा घंटा ऐसा पावरफुल योग करना है, याद करना है, जो हम अपनी दुनिया में खो जाएंगे। ठीक है भाई, मंजूर है? इतने दूर से मधुबन में आए, कुछ तो लेकर जाएंगे ना। बाबा खातरी क्या करता है भाई? अंजू बहन बोलो दीदी, खातरी क्या करता है? खिलाने की तो खातरी करता है, लेकिन विशेष अनुभव की सौगात भी देते हैं। इस तरह से बाबा खातरी भी करते हैं। ठीक है, तो सब खड़े हो जाएंगे दीदी लोग। भले तो
बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है।
ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वही है कहता बाबा तो बस मेरा है।
बाबा तो बस मेरा है, तो बस मेरा है बाबा, तो बस मेरा है बाबा, तो बस मेरा है।
जाता है थोड़ा खुला खुला बैठो, अभी आधा घंटा आपको बैठना है। आप भाई लोग आगे आओ, थोड़े खुले खुले बैठ जाओ एकदम। आधा घंटा हम अपनी मस्ती में मस्त हो जाएंगे। ठीक है भाई, आओ आओ बैठो, बैठो ऊपर, बैठो ऊपर, बैठना है ऊपर बैठो। ये कुर्सी है इधर चाहे तो। ओम शांति। थोड़ा कम करना, इसका आवाज आएगा इसमें थोड़ा। इस देह रूपी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति, जल रही हूँ, जग मग रही हूँ, मस आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति से दिव्यता का प्रकाश, दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मोहसा आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति के चहुओ सुंदर आभा मंडल अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप आत्म ज्योति हूँ, पवित्रता का प्रकाश, मोज आत्म ज्योति से चारों फैल रहा है। परम सुख की अनुभूति हो रही है। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्म ज्योति हूँ, स्वयं भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत मुरली में गाते ही रहते हैं। मुझे अपने भाग्य पर नाज है, मैं आत्मा रूपी चैतन्य ज्योति इस देह रूपी चैतन्य मोमबत्ती से न्यारी होकर बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही, जा रही हूँ। इस विश्व के गोले से चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूँ। जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। मोह आत्म ज्योति ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस यह, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरी अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे, मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि से असीम प्यार और अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रहा हूं। बाबा मुझे योगी भव का वरदान भी दे रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की दृष्टि का आनंद लेते लेते बाबा की बाहों में समा गया हूं। परम सुख की अनुभूति हो रही है। बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। सिकिलदे बच्चे मैं बेहद खुश हूं। मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है। मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे इस फरिश्तों की दुनिया में सदा आपका स्वागत है। जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति मुझसे करना चाहो करते रहो। जो भक्ति मार्ग में गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा निभाने मैं आया हूँ। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम पिता के रूप में अनुभव करो। छोटा बच्चा या बच्ची बनकर मेरी गोदी में खेलो। मेरा आज्ञाकारी वफादार फरमानदार बच्चा या बच्ची बनकर पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्वयं निराकार भगवान मुझे साकार रूप में आकर पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा था। वो हर रोज दूर देश से आकर मुरली द्वारा मुझे मधुर शिक्षाओं से सजाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भरते हैं। जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। मुझे अपने टीचर पर नाज है। प्यारे बच्चे, अभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो। मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो। मैंने दिए हुए मन मना भव के मंत्र का अजापा जाप करते रहो। मीठे बच्चे, कभी मुझे खुदा दोस्त के रूप में अनुभव करो। मेरे साथ बैठकर अपने दिल के समाचार की लेन देन करो। स्वयं को एक एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव करो। मेरे साथ खाओ, मेरे साथ खेलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ रास रचाओ। सचमुच मैं कितनी न खुश नसीब आत्मा हूं जुड़े एक भगवान के साथ, विभिन्न संबंधों की अनुभूति करके स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं। क्या कहने मेरे भाग्य का, फरिश्ता स्वरूप की चमकीली ड्रेस को छोड़कर मैं आत्म ज्योति बुद्धि रूपी विमान में बैठकर दिव्य ज्योति धाम की ओर उड़ती हुई जा रही, जा रही हूं। ओहो, दिव्य ज्योति धाम में पहुंच गई हूं, जहां चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितना प्यारा है यह मेरा मूल वतन, मेरा स्वीट साइलेंस हो, ओह मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राण आधार, प्राण प्यारे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबल, मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है, मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य नेत्र से बाबा के सुंदर स्वरूप को छवि को निहार, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों में बस चुके हैं, बाबा ही बाबा मुझे नजर आ रहे हैं। बाबा बाबा, मैं आत्म ज्योति दुख के सागर में गोते खा रही थी, चिल्ला रही थी, और हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपने दिल तख्त पर अपनी शीतल गोद में बिठा दिया बाबा। मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मेट गई बाबा। जो आपने मुझ पर एहसान किया बाबा, और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता बाबा। ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत है, इस साकारी दुनिया के सूर्य से हजारों गुना शक्तिशाली है। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव पिता से बेहद शक्तिशाली किरणों की बरसात मौज आत्म ज्योति पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य शिव पिता से असीम शक्तियां, अनंत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप भस्म हो रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाए और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। इतने बड़े विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर महा ज्योति परम ज्योति शिव बाबा से मधुर मिलन मना रही हूं। बाबा ज्ञान सूर्य, मैं आत्म ज्योति सूरज मुखी बनकर ज्ञान सूर्य शिव पिता को संपूर्ण एकाग्रता के साथ देख रही हूं, उनकी याद में खो चुकी हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं, याद के बल को और फल को अनुभव कर रही हूं। बाबा बस आत्मा की ऊर्जा की लेवल बढ़ती जा रही है। बस मेरा दिल यही गा रहा है, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, तू सूरज मैं सूरजमुखी हूँ पिया, ना देखो तुझे तो खिले नहीं जिया, लागे नहीं जिया। बाबा मैंने आपसे बहुत कुछ पा लिया, बाबा अथाह शक्तियां प्राप्त कर ली, बाबा मेरी एक और छोटी सी आस है, बाबा मेरे दिल रूपी मंदिर में मेरे दिल रूपी मंदिर में आपके ही याद की, आपके ही प्यार की अखंड ज्योत जलती रहे बाबा, बस जलती ही रहे, और मैं आत्मा इस संगम की हर घड़ी आपके ही महिमा के गीत गाते रहूं, गुनगुनाते रहूं बाबा। आपके ही संग में, आपके ही रंग में रंगती रहूं बाबा। शक्तियों से भरपूर आत्मा, बुद्धि रूपी विमान में बैठकर, निराकारी दुनिया से वाया सूक्ष्मवतन, इस साकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई आ रही हूँ, आ रही हूँ, और इस शरीर पी चैतन्य मोमबत्ती के ऊपर मैं आत्म ज्योति विराजमान हो चुकी हूँ, मोज शक्तिशाली आत्म ज्योति से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों पैर वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना है, डायरेक्ट परम धाम से शक्तियों के सागर शिवपिता से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन मुझ आत्म ज्योति पर पड़ रहा है, मैं आत्म ज्योति शक्तियों के फाउंटेन के नीचे नहा रही हूँ, शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ,
मस्तक पर, मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। महज मस्तक मणि आत्मा से अष्ट शक्तियों की चमक, मौज मस्तक मणि से चारों फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ।